नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, किसी ने कहा है, फेंको हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे कि मौत को भी आ जाने दो सामने। ऐसे हौसलों के साथ जब किसी भी बात, किसी भी समस्या का सामना किया जाता है तो समस्याएं घबराकर भाग जाती हैं, परिस्थितियां घबराकर भाग जाती हैं और हमारा जीवन पुनः पटरी पर आ जाता है, पुनः खुशियों से लबरेज हो जाता है। समाधान कार्यक्रम आपको ऐसे ही समस्याओं से जूझना और उनके समाधान तक पहुंचाना सिखाता है। और हमारे साथ हमेशा होते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया
प्रता जी। इस प्रकार का जो एटीट्यूड होता है कि हम लड़ें और लड़ करके समस्याओं को हरा दें, भगा दें, ये जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं वीरता का द्योतक है, योद्धेपन का द्योतक है। और जब कभी हम इस प्रकार से अडिग होकर खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से परिस्थितियां और समस्याएं हल्की होने लगती हैं।
बिल्कुल यही बात है, लेकिन इसके लिए आज के परिवेश में बहुत ज्यादा मनोबल की जरूरत है, यानी मन की शक्ति की, दूसरे शब्दों में कहें ईश्वरीय शक्ति की। क्योंकि आज मनुष्य भौतिकवादी होता जा रहा है, उसे पता नहीं कि उसका मनोबल क्यों कमजोर पड़ रहा है, उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं कि जो वो सोच रहा है, जो वो निगेटिव हो रहा है, या उसको क्रोध आ रहा है, या उसकी वासनाएं बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं उसको वीक कर रही हैं। तो आज जरूरत इस चीज की है कि हम सच्चे अर्थों में वीर बने। केवल दुश्मनों से लड़ना ही वीरता नहीं, लेकिन अपने मन की निगेटिव शक्तियों से लड़कर उन्हें समाप्त कर देना, ये सचमुच आज के परिवेश में वीरता है और इसकी बहुत जरूरत है। तो अगर ऐसी बहादुरी हर व्यक्ति अपना ले, रिसीव कर ले परमात्म शक्तियों को, तो ये सब समस्याएं बहुत कमजोर नजर आती हैं। वास्तव में जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, समस्याएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी शक्तिशाली वो हमें प्रतीत होती हैं। किसी ने सच कहा, किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर की का ये कथन है कि अगर ज्ञान युक्त होकर, विवेक युक्त होकर समस्याओं पर दृष्टि डाली जाए तो क्या पता चलेगा कि वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो प्रतीत हो रही है। हमने अपने को छोटा बना दिया है। आज भी कोई मेरे से मिल रहे थे तो कह रहे थे, मैं आपसे हमेशा पूछती थी, बहुत बीमार रहती है वो माता है, बुजुर्ग हो गई अब तो, उसने एक लंबा संघर्ष 30 साल का बीमारियों के साथ गुजारा है। तो कह रही थी, मैं आपसे पूछती थी, मैं बड़ी हूं या परिस्थिति? तो आप उत्तर देते थे, नहीं, तुम शक्तिशाली हो, परिस्थितियां कमजोर हैं। और इसे एक वाक्य ने, इसको महावाक्य कहें, उसके मनोबल को बहुत बढ़ाए रखा। और अगर वो ये मान लेती कि परिस्थिति तो बहुत बड़ी है, मैं तो इनके सामने कमजोर पड़ गई हूं, ये तो मुझे हरा कर ही छोड़ेंगी, तो शायद आज वो जीवित न होती, अभी भी हमारे यहां आई हुई है। तो बहुत अच्छी ये बात है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने। और जैसा बहुतों के साथ अनुभव हो रहे हैं कि जब हम अपने शक्तिशाली स्वरूप में, अपने शक्तिशाली एटीट्यूड्स में, शक्तिशाली फीलिंग्स में रहते हैं, तो निश्चित रूप से समस्याओं का फोर्स बहुत कम हो जाता है।
और वैसे भी कहा भी जाता है प्रता जी कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेते, और जब हम हार स्वीकार कर लेते हैं तब तो परिस्थितियां हावी हो ही जाती हैं, फिर उससे निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए हम हार स्वीकार ना करें लेकिन लड़ते रहें।
हाँ, बस इसके लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है ना। देखिए, कहने के लिए तो सहज है कि हम हार स्वीकार न करें, लेकिन एक व्यक्ति जब बार बार हारता है, जब बार बार उसे निराशा और असफलता मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हार मान ही लेता है कि अब तो बाजी अपने हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ किया नहीं जा सकता। इसी के लिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि मनुष्य को स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट करनी चाहिए, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, और उसे ईश्वरीय ज्ञान की भी जरूरत है। केवल मेडिटेशन नहीं, लेकिन ज्ञान जिससे वो हर चीज को पॉजिटिवली देख सके, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, उसकी विचारधाराएं बहुत ब्रॉड हो जाएं, ताकि वो हर छोटी बात को बहुत छोटा समझे और बड़ी बात को भी छोटा समझे।
बिल्कुल, जब युद्ध की बात चल रही थी भ्राता जी, तो आपने एक बात कही कि वास्तव में अपने अंतर के जो विकार हैं, अंतर की जो कमजोरियां हैं, उनसे लड़ना और विजय प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे संसार में ये बात कही जाती है कि आप पूरे संसार को जीत सकते हैं, लेकिन अपने आप को जीतना बहुत ज्यादा कठिन है। तो इस कठिनाई को कैसे पार किया जा सकता है?
देखिए, यही कि बहुत लोग जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनमें से बहुतों की एक प्रॉब्लम देखी जाती है। वो कहते हैं हमें भय लग रहा है। अच्छे अच्छे लोग जो बाहर से पावरफुल दिखते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्यों हमें कुछ विशेष चीजों से डर लग रहा है। जैसे किसी ने बाहर से कुंडा खटखटा दिया, हम भयभीत हो गए, पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो भय है, ये आंतरिक कमजोरी है ना, जो मनुष्य को हर फील्ड में कमजोर बना देता है। चाहे उनके सामने समस्याएं हों, किसी ने छोटी सी बात भी कह दी हो तो भी। तो इस भय से लड़ना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण चीज इसलिए है कि जब तक हम इससे नहीं लड़ेंगे, और विकार जो बहुत छोटे हैं वो भी हमें प्रबल नजर आने लगेंगे। बस इसके लिए पहले तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, कुछ भय ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्मों से चले आ रहे होते हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ज्ञान के चिंतन के द्वारा उस तरह के भय को समाप्त करना चाहिए। जैसे बरसात हो रही थी, कई जगह बहुत ज्यादा हुई, तो कुछ लोगों ने मुझे फोन किए कि हमें पानी से बहुत डर लग रहा है। कुछ अभी सुन लिया, उत्तराखंड में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, विदेशों में भी कई जगह बाढ़ आई, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये बारिश को देखकर भयभीत हो रहे थे। तो ये पूर्व जन्मों का होता है। जैसे आज एक बहुत वंडरफुल समाचार था कि कोई व्यक्ति विदेश से आया अपने घर भारत में, मुझे सिटी का नाम भूल गया, किसी नदी में बहुत पानी आया हुआ था, सब लोग उसे देखने जा रहे थे, वो भी देखने गया, और उसकी छोटी बच्ची उसकी गोद में थी जो बहुत छोटी थी, पता नहीं 6 मास की या 9 मास की। और जैसे वो देख रहा था रेलिंग से नदी को, क्या हुआ, वो बच्ची उसके हाथ से छिटकी और नदी में गिर गई। कोई तरीका नहीं था कि कुछ किया जा सके। 6 किलोमीटर दूर जाके उसका शव मिला। तो ये चीजें मनुष्य को भयभीत कर देती हैं, और ये भय कंटिन्यू रहता है, ये अगले जन्म में चलता है, जब तक कि इस भय से पावरफुल चीजें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट न करें। तो ये आंतरिक कमजोरियां मनुष्य को विघ्नों से लड़ने में बहुत कमजोर बना देती हैं। इसलिए इनको पहचानना कि कौन सी कमजोरी मेरे अंदर काम कर रही है, और उसको समाप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की कुछ बातों का प्रयोग करना। जो हमारे पास जो ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं वो जानते हैं ज्ञान का एक अथाह भंडार है। जैसे परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, वैसे ही उसने हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है, संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। तो उसका प्रयोग करके हम इन कमजोरियों को नष्ट करें। जैसे मुझे दूसरी बात भी याद आ गई, किसी ने कहा मुझे बार बार इरिटेशन होता है, अभी उसे चिड़चिड़ापन आता है, वो अपने बाह्य क्रोध को तो बंद कर लेता है, उसको नहीं आने देता, लेकिन एक सूक्ष्म इरिटेशन उसके अंदर बना रहता है, किसी ने कुछ किया और वो अंदर ही अंदर जैसे गर्म हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आत्मा कमजोर होती जाएगी, मन की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी, और जब समस्याओं का उसे सामना करना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने को वीक पाएगा। तो ये जो आंतरिक कमजोरियां हैं जो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें गिनाई जा सकती हैं। एक व्यक्ति दूसरे से कंपेयर करके अपनी खुशी को नष्ट कर रहा है, वो चिंतन में रहता है, खुश नहीं रहता। तो इन चीजों को पहले तो पहचानना, फिर राजयोग के साथ ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इनको हल्का करना, इनको डिलीट करने का अभ्यास करना, क्योंकि ये मन एक चिंतन शक्ति है ना। तो पहली चीजें भी चिंतन से प्रिंट हुई हैं, जो निगेटिव चीजें हुई, और अगर हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो हमें पावरफुल चिंतन ही फिर से देना होगा। तो पावरफुल चिंतन से नई चीजें प्रिंट हो जाएंगी। पुरानी जो कमजोर हैं वो डिलीट हो जाएंगी।
बिल्कुल, तो जो चीजें भरी हुई हैं हमारे अंदर उनको एक अच्छे चिंतन से, राजयोग के अभ्यास से हम जो पुरानी चीजें हैं निकालते चलें और नई जो अच्छी चीजें हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे अंदर साहस हो, दृढ़ता हो, धैर्यता हो, इन अच्छी चीजों को हम प्रिंट करते चलें ताकि जीवन में हम सफल हो।
और एक बात मुझे इंपॉर्टेंट बात कहनी है, अभी अभी 15 मिनट पहले ही मुझे किसी लेडी का फोन आ रहा था कि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है, ये बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने उनके साथ जो गलतियां की हैं पास्ट में, औरों के साथ भी जो गलतियां मैंने कर दी हैं, किसी को बुरा बोलकर मैंने कष्ट दे दिया है, अपने पति को भी थोड़ा कम सुख दिया है, उसकी भावनाओं को मैंने हर्ट बहुत किया था, वो मेरे से खुश नहीं रहते थे, तो अब जब वो चले गए मुझे वो बहुत याद आती हैं चीजें। कहा जाता है ना, मनुष्य जब चला जाता है तो उसकी बहुत याद आती है। पहले उससे घृणा करते थे, पहले उन्हें सुख नहीं देते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो रो रहे हैं, उनकी याद आ रही है वो कितने अच्छे थे। अगर काश वो तब सोच लेते ये कितने अच्छे हैं तो शायद इनको आज कम रोना पड़ता। तो बता रही थी कि जो पास्ट की बातें हैं मैं उन्हें भूल ही नहीं पा रही हूं
जी।
बहुत चीजें मैंने करके देख ली, तो मेरे से इसका समाधान पूछ रही थी, तो इसके लिए मैंने उन्हें भी यही बताया। और अपने दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पास्ट हो गया उसको हल्का करें, क्योंकि वो उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब रिपीट नहीं होगा।
बिल्कुल दादा जी, आपने जो बात कही है कि पास्ट की जो बातें हैं कई बार हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, वैसा ही मैं प्रथम मेल ले रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि मैं 2 वर्ष से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूं और मुझे सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 5000 वर्ष के बाद हूबहू ड्रामा के चक्र के रिपीट होने की बात से मैं दुखी हो जाती हूं। मेरे पास्ट में ऐसी ऐसी दुखद घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं दोबारा नहीं चाहती, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे ये घटनाएं अगले कल्प में मेरे साथ ना हो?
बहुत अच्छा सोच रही है, और ऐसे समाचार, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। वास्तव में उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख हुआ था, कईयों का तो ऐसा हुआ वो बताते हैं कि अगर हम उस पीरियड को याद करते हैं तो रूह कांप उठती है, और निश्चित रूप से भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो समय दोबारा कभी ना देखना पड़े।
जैसे ये भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था दादा जी, कई लोग जो उस दौर से गुजरे थे बहुत ही गहरे सदमे से, बहुत बुरी घटनाओं से गुजरे।
देखिए उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ा हुआ है जो अगले जन्म में भी कंटिन्यू रहता है। तो ये ऐसी चीजें होती ही हैं कि बहुत बुरा हो गया है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आप बाबा के पास क्यों आए? प्रभु मिलन हुआ है उनको, उनका उनको संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है, यूं कहें कि उनकी जन्म जन्म की भक्ति का उन्हें फल भी मिला है, बहुत बड़ी चीज उनके साथ हुई है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्यों आए इधर? ब्रह्मा कुमारी का तो नाम आपने पहले भी सुना था लेकिन नहीं आए थे। कहा तब तो हम अपनी मस्ती में मस्त थे ना, भगवान की ओर तो देखते ही नहीं थे, सुख में सुमिरन कौन करे उसका। तो दुख आया तो शांति की, खुशी की तलाश, एक बेचैनी हो गई थी जीवन में, सब कुछ चला गया, तो तलाश हमें यहां ले आई खींच के। तो मैं उन्हें कहता हूं बलिहारी उस महादुख की, मान लो महादुख था, बलिहारी उस महादुख की जिसने आपको भगवान से मिला दिया। अभी प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करो। जो पास का दुख था वो कल्याणकारी हुआ आपके लिए। कहीं कहीं दुख बहुत कल्याणकारी होता है, कहीं कहीं दुख हमारे सुखों के मार्ग खोल देता है। यही इनके साथ भी हुआ, चांदनी के साथ, इनके लिए प्रभु मिलन का मार्ग खोल दिया, और जब तक वो दुख ना आते तब तक ये प्रभु मिलन को प्राप्त न कर पाते, क्योंकि कुछ पाप कर्म प्रभु मिलन के मार्ग में दीवार बने हुए थे, उस दीवार के बाहर ये देख ही नहीं सकते थे। अभी वो जो पाप कर्म थे उनका ये फल हुआ दुख, वो नष्ट हो गए, सेटल हो गए, और इनके लिए मार्ग स्पष्ट हो गया, क्लीन हो गया कि ये प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें। तो मैं अपनी चांदनी शर्मा को कहूंगा कि अब तो वर्तमान का आनंद लो, और रही बात कि वो दोबारा ना आए, दोबारा तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो अगले कल्प में आएगा तब उसकी आपको कोई जानकारी नहीं होगी, वो बिल्कुल नया होगा, जैसे इस कल्प में आपके लिए नया था, अब आपको लगता है ना कि वो ना आए, इस फ्यूचर में वर्तमान के जो फ्यूचर है, इस कल्प का जो फ्यूचर है, इसमें तो वो कभी नहीं आएगा। इसलिए निश्चिंत हो जाओ और अपने अंदर योग की ऐसी शक्ति प्राप्त करो, अपने अंदर परमात्म मिलन का इतना सुख भर लो कि वो दुख फीका लगने लगे। और अगर हम परमात्म मिलन का सुख, अतिंद्रिय सुख जिसे कहते हैं, वो बहुत प्राप्त कर लेते हैं, तो पास्ट के दुख हमें ऐसे लगते हैं वो तो मनोरंजन था, वो तो एक साइड सीन था, वो कुछ नहीं है, वो तो पूरा हो गया, अब जो बीत गया उसको क्या याद करना है। तो मैं चांदनी शर्मा को कहूंगा, वर्तमान का आनंद लो, वो घटनाएं आपके पास दोबारा कभी नहीं आएंगी। इसलिए राजयोग का अभ्यास कर्म करते हुए इन्हें 4 घंटे रोज अवश्य करना है। ईश्वरीय महावाक्य सुनने का भी बहुत ज्यादा सुख ये प्राप्त करें, तो वो सुख उस दुख को आप भुला देगा।
बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम ईश्वरीय सुख वर्तमान में इतना प्राप्त कर लें कि जो पास्ट का दुख है, बार बार जो हमें खींच रहा होता है, उससे हम मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ईश्वरीय आनंद प्राप्त करें। इसलिए राजयोग का बहुत गहरा अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। माता जी, इसी से जुड़ा हुआ जो 5000 वर्ष की बात है, हमारे एक और दर्शक ने जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि जब हूबहू सब कुछ रिपीट होना है तो हमारा पुरुषार्थ भी तो रिपीट होगा, ऐसे में पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सब चीजें तो फिक्स हैं ही, तो यदि मैंने पिछले कल्प में पुरुषार्थ किया होगा तो इस कल्प में भी कर लूंगा।
राजेश जी को मैं कहूंगा कि उत्तर तो इन्होंने दे दिया कि पिछले कल्प में अगर मैंने किया होगा तो इस कल्प में भी मैं कर लूंगा, लेकिन इन्हें ये बात भूल गई कि जो पार्ट है एक्टर्स को वो प्ले करना ही पड़ता है। हम इस विशाल नाटक के एक्टर हैं, जो पार्ट हमें मिला हुआ है वो बिना हमारे एक्ट किए तो नहीं होगा ना। हम एक्टर्स हैं तो हमें एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, इसलिए कल पहले जो एक्टिंग हमने की थी वो एक्टिंग भी हमें करनी है। हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट हमारी एक्टिंग क्या है, ये हमें कोई जानकारी नहीं। आज शाम तक हमारी एक्टिंग क्या होगी ये हमें कुछ पता नहीं, अगले 2 साल में हम क्या करेंगे ये हमें कुछ पता नहीं। इसलिए मनुष्य प्लानिंग करता है ना, लेकिन जब उसकी मनोस्थिति, जब उसकी स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठ जाता है, तब जो उसका पार्ट है, जो उसे करना है, वैसे ही विचार उसके मन में उठने लगते हैं और वो उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोच के ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, अगर ये सोच के निष्क्रिय हो जाता है तो इसका अर्थ है उसने किया ही नहीं है, वो पहले भी निष्क्रिय था। इसलिए ये सोचना ही गलत है। हमें एक पार्ट मिला हो, ये तो सत्य है कि हमारा पार्ट फिक्स है, लेकिन उसका एक्ट करने में हम स्वतंत्र हैं कि हम कितना अच्छे से अच्छा करें। तो अब हमें वर्तमान में यही सोचना चाहिए कि हमें जो पार्ट मिला, जो कल पहले भी हमने किया था, उसको हम अच्छे से अच्छा करें। और सवेरे उठकर हम बहुत ज्यादा सुख लें। मान लो हम कल पहले भी सवेरे उठे थे, अब हम सो नहीं पाएंगे, हमारी जो चेतना है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें वैसा ही जागृत रखेगा। इसलिए सब कुछ रिपीट हो रहा है तो एक्टिंग करना भी रिपीट करना है, ये याद रखते हुए एक अच्छा पुरुषार्थ इन्हें करना चाहिए।
बिल्कुल, तो मतलब पुरुषार्थ करने के पश्चात ही हमें प्रारब्ध की प्राप्ति होगी। हाँ। यदि अभी हमने छोड़ दिया तो हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग ब्रदर जी, जैसे इन्होंने राजेश जी ने प्रश्न किया है इसी के आधार पे, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने भी कहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस नियति के होते हैं कि चलो अजगर भी तो कोई काम नहीं करता, और यदि उसकी नियति में है, उसके नसीब में है, तो खुद ब खुद चूहा चल के उसके वहां जहां वो है वहां तक पहुंच जाता है। तो ये जो भविष्य है, भविष्य के गर्भ में यदि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ होगा ही, ऐसा भी मान करके कई लोग चलते हैं। तो भाग्य वास्तव में क्या है? भाग्य में है तो हो जाएगा, कई लोग ऐसा कह के अपने आप को सहज रूप से चलाते रहते हैं, तो इस विषय को थोड़ा सा
देखिए। भाग्य कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि भाग्य, हरेक का भाग्य भगवान ने बना दिया है। हर आत्मा अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र है, और मूल रूप से मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसे कोई मनुष्य आज ये कहे, भाई मेरा तो भाग्य काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा मुझे, मेरा तो भाग्य पता नहीं कैसा है, भगवान ने मेरे लिए तो इनजस्टिस कर दिया है। लेकिन उसका उसको जो ये अनुभूति हो रही है अप्राप्ति की, असफलता की, इसका कारण उसके कर्म ही हैं, चाहे इस जन्म के कर्म चाहे इससे पूर्व जन्मों के कर्म। तो जन्म जन्म समझो हजार साल से हमने जो कर्म किए हैं उसका फल ही भाग्य कहलाता है। तो ये कर्म और फल का साइकिल चलता रहता है, कर्म करता है उसका फल मिलता है, उस अनुसार फिर मनुष्य कर्म करता है क्योंकि फल की छाया कहीं ना कहीं कर्म पर फिर रहती है, फिर उसका फल मिलता है। ये जो साइकिल है ये भाग्य बन जाता है। तो अगर ये मनुष्य सोचे कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाई अजगर के मुंह में भी तो आवे, लेकिन अजगर के पास बुद्धि कहाँ है इतनी, मनुष्य बुद्धिमान है, वो निरंतर एक्टिव है, वो क्रिएटिव है। मनुष्य अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एक्टिवनेस को नष्ट नहीं कर सकता। अगर वो उनके अनुसार उन्हें यूज नहीं करेगा तो डल हो जाएगा। तो भाग्य ने ही मनुष्य को चिंतन शक्ति दी है, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दी है जो जानवरों के लिए नहीं है। तो हमें भाग्य पर ठहर कर निष्क्रिय नहीं हो जाना है, हम तो एक्टर्स हैं, हमें एक्टिव होना है, हमें मेहनत करनी है। और मैं तो ये कहूंगा कि भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है। जैसे मैंने कहा हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसमें भगवान का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है। सच तो यही है, भले ही भगवान को हम भाग्य विधाता कहते हैं लेकिन भाग्य निर्माण भी वो हमारे कर्म अनुसार ही करता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने एग्जाम में 5 क्वेश्चंस का जैसा आंसर दिया हो, जो एग्जामिनर होगा मार्क देने वाला वो उसके अनुसार ही तो देगा ना। ये तो नहीं उसने पूरा गलत उत्तर लिख दिया है और वो उसको 10 में से 10 दे देंगे परफेक्ट उत्तर है, वो आज की बात अलग है कि कोई दे देते हूं, लेकिन ये नियम तो नहीं है ना। तो भगवान भाग्य विधाता है पर भाग्य का निर्माण मनुष्य के कर्म से होता है। इसलिए अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर हमें हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे पूर्व के कर्म बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इसे प्रेरणा देकर हम वर्तमान में कर्म अच्छे करें ताकि हमारा फ्यूचर का भाग्य बहुत एक्सेलेंट हो जाए, बहुत ब्राइट हो जाए। देखिए मुझे याद आ गई एक बात, ये प्रश्न बहुत लोग किया करते हैं कि कुछ लोग जो अच्छे कर्म नहीं कर रहे, आप कहते हो कर्म से भाग्य बनता है, कुछ लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, वो ऑनेस्ट भी नहीं है, वो बहुत अच्छे एक्टिव वर्कर भी नहीं है, लेकिन धन उसके पास चला आ रहा है, लोग कहते हैं बड़े भाग्यवान हैं। सचमुच भाग्य लेकर पैदा हुए, भगवान ने इन पर भाग्य की बरसात की है, लेकिन रहस्य यही है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उन आत्माओं ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनको यहां धन मिल रहा है, सफलता मिल रही है। बिना कर्म के कुछ भी फल मिलता नहीं है। जिसके पास जो कुछ है, अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता, धन है या गरीबी है, ये उसके कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए भाग्य हमारे हाथ में है, अब हम बहुत अच्छे कर्मों से अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें। और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि इस समय तो ये जो कलयुग का अंत चल रहा है इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, गोल्डन एज इज अबाउट टू कम, और ये जो कलयुग दुनिया है इट इज अबाउट टू एंड नाउ। तो दोनों के बीच के समय पर हम खड़े हैं। इस समय तो भगवान हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने की और विधियां बहुत सिखा रहा है, जिसमें हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना, अपनी पावर ऑफ प्योरिटी को बढ़ाना, अपनी विल पावर को बढ़ाना, ये सब भी उसमें काउंट होता है पुण्य कर्मों के साथ। तो अब भाग्य हमारे हाथ में आया, हर जन्म में जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा उसका भाग्य होता है, तत्काल भी उसे भाग्य मिलता है और फ्यूचर में भी उसे भाग्य मिलता है। लेकिन वर्तमान समय को ये गिफ्ट है, ये गॉडली ब्लेसिंग है कि इस समय हम अपने 2500 साल का भाग्य एक साथ निर्माण कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने कही है कि अब पास्ट वाली जो बात है उनको भूलते हुए हमें फ्यूचर को देखना और प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। और जहां तक भाग्य की चर्चा चल रही है और पूरी दुनिया में खास करके भारतवासी तो भाग्य पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन भाग्य का निर्माण कैसे होता है इस चर्चा को हम चाहेंगे कि हम आगे भी जारी रखें, क्योंकि अधिकांश लोगों का ये मानना है कि ऊपर से ही भगवान भाग्य लिख करके भेज देते हैं और जो नसीब में है वही प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ अगली कड़ी में भी करें, आज समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। वर्तमान जो है एक गिफ्ट की तरह है, हम इसे गिफ्ट की तरह यूज करें। जैसे हमारे एक दर्शक ने लिखा कि पास्ट की बुरी घटनाओं का छाया हमेशा ही हमारे ऊपर बना रहता है, जिसके कारण हम अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं या प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात बहुत स्पष्ट रूप में लिखी हुई है कि पास्ट की तुम पश्चाताप मत करो, अर्थात भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत करो, प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान हीरे तुल्य है। और साथ ही भाग्य की जो चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, इस चर्चा को समाधान में हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।